जाग्रतप्रदश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं आज हम लोगों दुनिया आज क्या महादेव व्यास पूजा व्यास पूजा अथवा गुरु पूजा, व्यास पूजा को ही गुरु पूजा कहते हैं। उसे जब
सर्कल
चारों तरफ से सर्कल खींचते हैं तो सर्कल के जितने पॉइंट्स हैं, बिंदुएं हैं, वो सेंटर से सब सम दूरी पर होते हैं। अर्थात सर्कल के अंदर में जहाँ सब बिंदुओं की, सर्कल के अंतर्गत के बिंदुओं की जहाँ से जिस स्थान से समान दूरी हो वो केंद्र बिंदु। उसमें जब हम एक लाइन खींच देते हैं ठीक बीचों बीच में तो उसको कहते हैं व्यास। अर्थात समग्र विश्व ब्रह्मांड के मूल केंद्र बिंदु भगवान है। भगवान को हटा दिया जाए तो ये जगत नहीं रहेगा, जब थकते पड़ेंगे। इसलिए केंद्र बिंदु से बीच में केंद्र भगवान उनको सर्वत्र जो व्याप्त कर दे उस भगवान को सर्किल के अंतर्गत में जहां तक उसकी परिधि जा सकती हो वहां तक उसको व्याप्त कर दे कोई, उसका नाम व्यास है। हम लोग जीव हैं, भगवान से भूले भटके हैं, विमुख हैं। अभी जो हमारा स्वरूप है ये हमारा स्वरूप नहीं है। एखन जे हमारे स्वरूप, हमारे स्वरूप ना, वो हमारा स्वरूप नहीं है। अभी ये हार्ड मांस चाम या जो जगत देख रहे हैं ये स्थूल है। हम इसी में आसक्त है। अभी समय जो हमारे स्वरूप की उपलब्धि करा देता है वो व्यास है। उस व्यास के स्थान पर बैठकर जो विश्व में भगवान को प्रकाशित करते हैं, जीवों के हृदय में प्रकाशित करते हैं और उसके स्वरूप के तरफ में ला देते हैं वो गुरु तत्व है, व्यास। व्यास जी ने क्या किया? व्यास जी ने भगवान के वो अवतार हैं और उन्होंने सेंटर बिंदु केंद्र बिंदु भगवान कार्तिक के जगत सब जगत में भगवान का नाम रूप गुण लीला का प्रकाश किया। इसलिए उन्होंने अपौरुषेय वेदों को चार भागों में विभक्त किया। एक साम जजु अथर्व इत्यादि और विभाग करके एक एक ऋषि को वो दिया और ऋषि अपनी परंपरा में, शिष्य परंपरा में अथवा पुत्र परंपरा में उस चीज को संरक्षित रखेगा, क्योंकि लोगों की स्मरण शक्ति उतनी नहीं रह गई। ने चार ऋषियों को अपना शिष्य बनाकर और उनको वो ज्ञान दिया।
पहला वैशंपायन समंत,
पहले ऋषि वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत, सुमंत चार। विवाह करने के बाद में एक ही वेद, वेद माने क्या, जो भगवान को जना देता है, वेद यति स्वयं प्रकाश, वह ज्ञान जो भगवान को जना देता है उसको कहते हैं वेद। वेद के अतिरिक्त भगवान को जानने का कोई उपाय नहीं, चाहे कोई ऋषि वेद के द्वारा ज्ञान लाभ करके उसको जनाए या वेद को पढ़ करके कोई जाने, किंतु वेद को पढ़ करके जानना असंभव। इसके बाद भी उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा है, ब्रह्म सूत्र जिसको कहते हैं, वेद का सार उसमें संकलन किया, किंतु उनको भी लोग समझ नहीं सके, इसलिए उसका अर्थ श्रीमद्भागवत के रूप में संक्षेप और 18 पुराण, 18 उपपुराण और 18 शाखा पुराण, ये 36 पुराणों की रचना की। इसके बाद में भी जब लोगों के समझ में नहीं आया तो शूद्र जाति के लिए, स्त्री जाति के लिए जिनकी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं हो सकती, उन लोगों के लिए महाभारत, जिसमें गीता एक है, महाभारत का, तभी उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। वे अपने ऋषि अपने आश्रम के बाहर एक नदी के तट पर विचार कर रहे थे, देखा जाए इससे कुछ नहीं हुआ, हमारे चित्त को प्रसन्नता नहीं हुई, तो मुझे क्या करना चाहिए। इतने में नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि ने कहा, जैसे आपने तो समस्त शास्त्र इत्यादि का प्रकाश किया किंतु आपको शांति नहीं, क्यों? अरे मैं तो नहीं समझता, डॉक्टर लोग ही, वैद्य लोग ही से बतला सकते हैं ये क्या रोग है, ले आप ही बतलाइए मेरे अंदर में क्या त्रुटियां हैं जो इतना करने पर भी हमारे मन को प्रसन्नता नहीं। उन्हें आपने सब कुछ किया, राजसिक तामसिक और सात्विक व्यक्तियों के लिए आपने शास्त्रों की रचना की, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था अच्छी तरह से दी, और जिसमें शूद्र स्त्रियां भी भगवान के तरफ में उन्मुख हो जाएं, इसके लिए महाभारत को आपने रचना की, किंतु कृष्ण स्वयं भगवान हैं आपने नहीं लिखा, आपने शंकर को कहीं स्वयं भगवान माना, कहीं शक्ति को माना, कहीं सूर्य को माना, कहीं गणेश को माना, कहीं इंद्र को माना, अवतारों में भी रामचंद्र जी को कभी माना, कभी बराहदेव को माना, कभी कुछ, कभी कृष्ण, लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए जीव का स्वरूप धर्म क्या है आपको अभी तक नहीं पता है, कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं ये भी नहीं पता है, और जितने प्रकार की उपासनाओं में हैं जगत में, उन उपासनाओं में गोपियों की, ब्रज की गोपियों की जो भक्ति है, सेवा है उस कृष्ण के प्रति, आपने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा। इसलिए कृष्ण का चरित्र आप प्रारंभ से, जन्म से लेकर और अंत तक वर्णन करें, और उसमें विशेष करके ये देख लाए कि गोपियों का चरित्र सबसे महनीय है, उत्तम और पवित्र है। यहाँ तक कि शांत रस जो ऋषि लोगों का है, इससे श्रेष्ठ हनुमान का दास्य, उससे भी श्रेष्ठ ब्रज के गोपों का, कृष्ण के प्रति सखा का भाव, उसे भी यशोदा मैया जी का वात्सल्य, और इससे भी श्रेष्ठ गोपियों का भाव है कृष्ण के प्रति। आप इसको अच्छी तरह से जब तक नहीं वर्णन करेंगे तब तक आपके मन में कभी भी शांति नहीं होगी। अधिकांश क्षेत्रों में आपने सुगुना भक्ति का वर्णन किया, शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया। सुगुना भक्ति माने क्या? उपाधि युक्त, माता पिता की सेवा करो, अतिथि देवो भव, मातृ पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, ऐसे आपने लिखा। अहिंसा परमो धर्मः, ये भी लिखा, सब तो आपने लिखा। ऐ महाराज शनियस एक तो भालो करे कोई कम्बल कम्बल दिए तो आसन का दिले भालो होते जी, दौड़ी जा दौड़ी। आसन महाराज जय हो, एक तो कम्बल दौड़े नहीं आए आपने जगह जगह पुराणों में उपनिषदों में औपाधिक भक्ति की बात आपने लिखी, आरोप सिद्धा संग सिद्धा भक्ति की बात लिखी, शुद्ध भक्ति जिसे कहते हैं नहीं लिखी। आप इसके लिए अप्रयत्न करें नहीं तो आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं आएगी। ब्यास जी सुन करके नारद जी तो चले गए, अब भक्ति के द्वारा इन्होंने समाधि लगाई। भक्ति योगे न मनसि सम्यक परिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्ण मायांच जदभ्यास। नारद जी जैसा कहा था बल्कि अपना जीवन चरित्र सुनाया। गुरु अपने शिष्य को अपनी अनुभूति देता है, भागवत तो पहले भी था, चैतन्य चरितामृत भी है, सब शास्त्र भरे पड़े हैं, गीता भी है, सबके घरों घर में होगी, किंतु अनुभूति युक्त तो ज्ञान कौन देगा? इसलिए शास्त्र द्वारा नहीं होगा केवल, यहां तक कि श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण है। भागवत पहले से ही तो है, व्यास जी के निकट में पढ़ने की क्या जरूरत थी, अपने आप हो जाता। ग्रंथ हैं सब, केवल ग्रंथ से नहीं चलेगा। जहाँ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान है, शुद्ध वैष्णव जो है, रसिक वैष्णव है, तत्वज्ञ वैष्णव है, तब हो सकता है। अपने आप ग्रंथ पढ़ लेंगे और ज्ञान हो जाएगा और भक्ति हो जाएगी, ये कभी संभव पर नहीं हो सकता। इसलिए गुरु अपना जीवन चरित्र में कैसे प्रारंभिक दशा से लेकर के भगवत प्रेम तक कैसे पाया, अपनी अनुभूति उसमें ढाल देता है, संचरित करता है। शास्त्र ये नहीं करेंगे, जितना मनोनिवेश आप करें ये चीज उसमें नहीं मिलेगी। इसलिए व्यास जी ने, नारद जी ने अपने जीवन चरित्र को सुनाया, कैसे मैं एक शूद्रानी के गर्भ से जन्मा था, 5 वर्ष की स्थिति में कैसे ऋषि लोग हमारे गांव में आए, और ऋषि लोग सनक सनंदन सनातन ये सब लोग थे, इस कोटि के उच्च कोटि के, और वो लोग इनके गांव में ठहर गए, चातुर्मास से यहीं पर किया। इनकी मैया वहां पर झाड़ू देने के लिए, चौका बर्तन करने के लिए आती, उनके साथ में इस बच्चे को भी लाती, उन्होंने मांग करके एक दिन उनका जूठा प्रसाद ग्रहण किया और उसका यह फल हुआ जैसे चित्त निर्मल हो गया। चित्त को निर्मल होने के लिए जितने भी उपाय हैं, शुद्ध वैष्णव संत मिले उनके चरणों की धोवन चरणामृत और मुख से महाप्रसाद और हरि कथा ये भी और चरणों की धूली ये चित्त को पवित्र कर देती है। नारद जी ने कहा ये इन चीजों को हम तीनों को ग्रहण करके हमको अनुभूति है हमारा चित्त निर्मल हो गया है। फिर उन लोगों ने कृष्ण मंत्र उपदेश दिया और मेरी माता हठात उन लोगों के जाने के बाद में माता भी मर गई और मैं मुझे निर्जन में रहने का सुयोग मिल गया और मैंने मंत्र जप इत्यादि करके और कैसी सिद्धि प्राप्ति मेरी हुई उन लोगों की कृपा से इस चीज को बतलाया। व्यास जी ने भक्ति के माध्यम से चित्त को पवित्र करके अपश्यत पुरुषम पूर्ण पूर्ण पुरुष को देखा। पूर्ण पुरुष या राधा जी इत्यादि शक्तियों को देखा, शक्ति समन्वित कृष्ण को देखा, माँ जसोदा इत्यादि के देख लें, ब्रज के देख लें, माने उन्हें समस्त ब्रह्मत्व परमात्मा भाव एवं भगवत तत्व स्वयं भगवत तत्व तिनी जो रस स्वरूप ये सब कुछ देख लें और देख करके उन्होंने देखा जे इसी से जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए उस तत्व को जैसे आंवले को हाथ में लेकर के देखते हैं, आंवला नहीं है हाथे ते देखा है पर तत्व के यही रकम देख लें आ देख लेंगे ये जारा जीव भगवान विमुख हुई जाच्छे विमुख हो रहे हैं वो इस संसार में गिर रहे हैं कोटि कोटि जन्मों के लिए। आज जो लोग उन्मुख होकर के भगवान की तरफ में जा रहे हैं साधु वैष्णव की कृपा से वो फिर भगवत भगवान का प्रेम पा करके धन्य हो रहे हैं। जस्या वही सुनि मानायांग कृष्ण परम पुरुष जिसके सुनने से तत्क्षणात भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं उन भगवान की लीला कथाओं को जो भगवत स्वरूप है उन्होंने भागवत के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया जिसके सुनने मात्र से ही भगवान हृदय में प्रवेश कर गए। किंतु सुनाने वाला भी ऐसा श्रीमद् भागवत की रचना है। उस श्रीमद् भागवत में पहले ही उन्होंने बतलाया निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखाद अमृत संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भूभाग। ये श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ जिन्होंने समाधि में पाया ये पूर्ण है ये रस स्वरूप है। गुरु परंपरा की धारा से ये गोलोक वैकुंठ वृंदावन से परंपरा की धारा से इस जगत में आया जिसे वो टूटा फूटा नहीं। इसमें अठली गुठली छिलका रेशे कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको फेंका जा सके एकदम रस में और वो भी सुख के मुख से द्रव संयुतम उनके मुख से निकलने से और रस में हो गया जिसकी एक बूंद भी कोई पान करे तो वह रसिक बन जाता है भावुक बन जाता है। ऐसे रसिक और भावुक लोग इस भागवत का नित्य काल तक श्रवण करें। यह रस उसमें क्या है पहले स्कंद में दूसरे स्कंद में तृतीय स्कंद चतुर्थ अष्टम नवम तक थोड़ा थोड़ा दिया गया पूर्ण रूप में नहीं दिया गया केवल अनुसंधान एक दिया गया जो है उसकी गंध दी गई। जैसे उद्धव जी जब आ रहे हैं द्वारका से उन्होंने कुछ वर्णन किया है द्वितीय या तृतीय स्कंद में या और कहीं कहीं का थोड़ा थोड़ा सा मिलता है जो कि ब्रह्मा के लिए शंकर के लिए नारद जी के लिए और लोगों के लिए बड़ा भारी दुर्लभ है। वो चीज है रस। भक्ति की अंतिम अवस्था का रस गोपियों के रूप में, गोपियों के भाव में वो प्रकाशित हुआ। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, भक्त लोग तो कहते ही हैं, जैसे उद्धव जी ने कहा, यह रस जिसमें मूर्तिमान रूप में है और उस रस से कृष्ण को और भी अधिक रसिक बना देती हैं। आशाम हो चरण रेणु जुषाम हमसे, उन गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए हम दुख की घास और छोटी छोटी घासें झाड़ियाँ ये सब हमारा जीवन साथ। और कृष्ण ने स्वयं कहा, न पारे हम निरवध्य सन, गोपियों के इस ऋण को मैं कभी भी दूर नहीं कर सकता, चाहे देवताओं जैसी लंबी आयु भी मेरी हो जाए नहीं पा सकता। वो क्या चीज है? वही भक्ति रस है, जो कि भागवत के अन्यत्र अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है, और गोपियों में ही, ब्रज के गोपियों में ही, वैसे तो ब्रज के सभी लता गुल्म इत्यादि में भी, वहाँ के यत्किंचित कुकट मुखम गोष्ठे समत संघि तत् सर्वानंद मुकुंद दैतम लीला अनुकूलम, सभी सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण के लीला के परिकर हैं, सभी हैं, किंतु गोपियों का भाव सर्वोत्तम। इस चीज को अन्यत्र कहीं भी नहीं दिया व्यास जी, इसलिए नारद जी की इस चीज को जगत में प्रकाश किया। और कैसे योग्य व्यक्ति को दिया? सबसे पहले संसार से निवृत्त, कोई कामना वासना का गंध नहीं, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी को दिया। इस भागवत में उन्होंने गुरु का लक्षण बतलाया है। गुरु कैसा होना चाहिए? जो सत शिष्यों में शक्ति संचार करे। शिष्य का लक्षण बतलाया, गुरु का लक्षण बतलाते पे सबसे पहले कह रहे हैं, वो क्या है?
तस्मात् गुरुं
प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मनुपशमः। तीन इसके दिए हैं गुरु का लक्षण, जिसमें कुछ स्वरूप लक्षण है और कुछ तटस्थ लक्षण है। शब्द ब्रह्म में निष्णात, वेद वेदांत उपनिषद सबका सार तत्व जिनकी जिनको उपलब्ध हो, और परब्रह्म में निष्णात हो, परम ब्रह्म की अनुभूति हो। परब्रह्म माने यहाँ पर कृष्ण, और उपशमाशयम संसार की जितने भी भोग वासनाएं कामनाएं हैं इनसे ऊपर उठे हुए, इसमें से स्वरूप लक्षण है भगवान का कुछ अनुभूति होनी चाहिए। समस्त शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी, समस्त शास्त्र ज्ञान होले यदि भगवत अनुभूति ना आए ताले शिष्य मध्य की संचार कर, केवल ज्ञाने द्वारा संभव पर नहीं। और लक्षण हो चाहिए जिसे विषय थी कि अनाशक्त हो गए, उपाश्रमाश्रमय धार हो चाहिए, अन्यथा गुरु शिष्य के कोनो रकम है कल्याण करते पारे। इर मध्य एक तो विशेष कथा ही श्रीमद् भागवते मध्य वर्णन करे छे, एक जगह जे जीवेर प्रति जीवेर की होच्छे, श्रीमद् भागवत मध्य प्रतिपाद्य विषय जीवेर सब थेके आवश्यक वस्तु की, अतः बोलछेन जी गोस्वामी एक जगह ते प्रति संदर्भ थे आज के देखना बोलछेन जी मुक्ति ही तो अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति, हमारे ये अन्यथा रूप जड़ शरीर एन जावती समस्त शरीर आसक्ति जत आसक्ति सब ये शरीर आश्चर्य संबंधी वस्तु थे, इन लोगों में आ सकती है। जब यह सब छूट करके स्वरूपेन व्यवस्थिति, स्वरूप में व्यवस्थिति होगी स्थिति, तब यह मुक्ति होगी। स्वरूप में व्यवस्थिति क्या, दो रूप, जीवे स्वरूपे थे एंड भगवत स्वरूपे थे। जब तक जीव के स्वरूप में, जीव की भगवान के स्वरूप में स्थिति नहीं होगी, तब तक जीव का जो स्वरूप है उसमें क्षुद्रानंद है, क्षुद्रानंद होते विशेष कोनो सुविधा हो गया। जब तक भगवत स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी और गुरु नहीं कराएगा, तब तक जीवों पर विशेष कृपा नहीं हुई। इसलिए भगवत स्वरूप की उपलब्धि करा करके भगवान के साथ में जीव, जीव का गुरु संबंध कायम कराता है, किंतु जिसकी अनुभूति नहीं है वो कैसे कराएगा। इसलिए व्यास जी ने इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का वर्णन किया। वर्णन करने के बाद में तब वो प्रसन्न हुए। इसलिए कोई भी भारतवर्ष में ऐसा संप्रदाय नहीं है, एमन कोनो संप्रदाय नहीं विश्व थे जब व्यास देव ऋणी ना हो, एमन की अद्वैतवादी राहु, कर्मी राहु, ज्ञानी राहु, जोगी राहु सकली, किंतु भक्तरा बेशी। एखन ये व्यास जी सकल पूज्य चरण, व्यास पूजा करा उचित, व्यास पूजा करते हेले की करा उचित। हमें गौड़ीय वैष्णव ये पढ़े देखे जे व्यास जे कार्य भगवत तत्व के चारिदिक प्रकाश करे छे, यदि ओई स्थले ते गुरुदेव यदि ओई रकम ओई गुरु परंपरागत आगत ताले तार पूजा कर ले भगवान पूजा हुई, व्यास देव पूजा हुई। किंतु एखने हमारा वैष्णवगण आचार विचारे तो हमें देखे हमारे गुरुपाद पद्म के परम पूज्यपाद माधव महाराज के ये दूजन के बेसि हमें देखे व्यास पूजार पद्धति। एरा की करते हैं व्यास पूजा करते हैं, गुरु परंपरा पूजा करते हैं, परंपरा करे पूजा करे राधा कृष्ण पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु इत्यादि पूजा करते, वैष्णव गणेर पूजा करते, निजे गुरु भाई गणेर पूजा करते, ब्राह्मण देर पूजा करते। एरकम होते विधि अनुसार थे जा आछे से रकम करते। आजकल पद्धति कुछ उल्टे गए, किसी को पता ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं सकलेर ना, किंतु अधिकांश देखी अपने आप बैठ गए पूजा ले लिया, ये व्यास पूजा गुरु पूजा नहीं है। गुरु अपने जन्म के दिन, गुरु निजे जन्म दिने थे तार गुरुदेव, गुरु परंपरा, राधा कृष्ण ये पंचतत्व इत्यादि पूजा करबे, गुरु वैष्णव पूजा करबे, आ तहार देखे ये भाव तहार अनुगत जन जा रहा छे तहार पूजा कर, तब वो लोग करेंगे। ऐसा नहीं जी अपने दाम्भिक, जैसे हमारे पूज्यपाद माधव महाराज एक बार सुने छिलम भक्ति था या हमें एक तो दाम्भिक मतन माछ खाने बसे गलम ताने दीनतापूर्वक बोल मधुर के शिक्षार जन तीन गुरु वैष्णव भगवान सब पूजा कर दिए बसे एमन कि हमारा तार शिष्य स्थान शिष्य रू शिष्य शिष्य हवार योग्यता राखी ना আমাদের পর্যন্ত গলায় মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে কাপড় দিয়ে পূজা করে। ইয়ে রাধাকুণ্ড গোবর্ধন गोकुल मथुरा सब ब्रजवासी गण के कापड़ पुष्प टाका पैसा सब दिए पूजा करे प्रसन्न करे। तापरे शिष्य गणे आतार गुरु भ्राता गण करे तापरे सकले अनुरोध हेते जे बसते आउहो ओटाउ अत्यंत दिनहीन हुए प्रसन्न हुए जे आमि एक तो गुरु ए भावे तेन एक तो आदर्श शिक्षा देवार जन्य इसे सकले निजे तार गुरुदेव के पूजा करा उचित एई जन्य। आजकल यही सब तथ्य ही जाने ना सब यदि देखो तो क्या चल रहा है
पासना जनरेटर चल रहा है हम लोग
कोई पंखा यदि थाके एरकम है गुरु भाई देर प्रति स्नेह थाके सम्मान थाके गुरु परंपरा प्रति आदर थाके ताहले सब लोग भक्ति दिगे आकृष्ट हो। और ये सब गुली यदि ना होए ताहले निजे ही आमी पूजा कराइलाम गुरु हुए ताहले एटा भक्ति तत्त्वर विरोध है। गुरु पूजा माने ए ठंडी हवा खंसा कथा भक्ति हमें कथा देखे ना कि सुने गुरु महाराज लिखे वैष्णवे पूजाई गुरु पूजा वैष्णवे जदि पूजा ना हलो आ ताहते जदि प्रसन्न ना हम ताल आमर मन है जे तिनी गुरु ही नहीं। नारायण ठाकुर लिखे
छन वैष्णव एव गुरु
विशेष करे चैतन्य चैतामृत हमारा देखी जे वैष्णव जदि शुद्ध आछन तारा सब वैष्णव मात्र ही शिक्षा गुरु आ शिक्षा गुरु की रकम होते महात्मा शिक्षा गुरु के बोलछन कृष्णर स्वरूप आ दीक्षा गुरु के कृष्णर रूप एक ही तत्व बोल आजकल यही सब गुली गोलमाल हो जाते हम तो कुछ प्रथम भ्रष्ट हो जा सब गुली विचार हुआ उचित आगे से रकम है भक्ति प्रवर्तित हो ताले हमरा बाँचते पारब ना तो हमरा सब ध्वंस हो जाए। यदि वैष्णव के हमरा सम्मान ना दीते पारलम गुरु भाई गण के गुरु वर्ग के ताले किसी जन भक्ति भक्ति मध्य प्रथम ही बोलछन रूप गोस्वामी छोटी गुण चाहिए छोटी बेग के दमन करा चाहिए बाको बेग मनस क्रोध बेग जीवा उदरो पस्त बेगम इत्यादि एगुली क्रोध हरे सब गुली द्वेष हिंसा निंदा इत्यादि काम क्रोध लोभ मद मोह मास सब जो दे दी रहे क्रोध रहे तो समझो जैसे भी भक्ति वृत्ति नहीं हुई। क्रोध किस लिए होता है क्रोध किसे जन्म है संसारी कामना वासना और विशेष है प्रतिष्ठा जन्म प्रतिष्ठा लाभ है तो जेखने व्याघात है सेखने क्रोध उपस्थित है जन काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य हमारे हरिनाम तो एक हरिनाम कर ले एक कृष्ण
नाम करे
सर्व पाप नाश प्रेमे कारण भक्ति करने कृष्ण नाम की बड़ी शक्ति है। और हम लोग इतना दिन से हरिनाम कर रहे हैं तब ताले हमारा देर क्या ना हो तबे जानो तहाते अपराधे प्रचुर कृष्ण नाम बीजता है ना करे हम लोगों में हृदय में कुछ अपराध है अनर्थ है अनर्थ के दूर होने पर भी अपराध रह जाता है समझ में नहीं आता जे कब का अपराध है कौन कौन जन्म का या इस जन्म का कौन है। इसलिए ये विशेष करके ये सब चीज जानना चाहिए अपराध किसको कहते हैं अनर्थ किसको कहते हैं नहीं तो भक्ति हृदय में नहीं आएगी। और यदि अनर्थ ही बढ़ता जा रहा है अपराध ही बढ़ता जा रहा है तो भक्ति वृत्ति कहाँ से आएगी कोमल। इसलिए खूब अच्छी तरह से विचार करके भक्ति के तरफ में हम लोगों को बढ़ना चाहिए तब तब व्यास पूजा संभव होगी गुरु पूजा संभव होगी। गुरु नहीं शिक्षा देता है जब परस्पर में द्वेष हिंसा कलह ये सब करो यदि वो देता है तो क्या समझना चाहिए यथार्थ गुरु नहीं है। इसलिए व्यास पूजा के दिन अंततः हम लोगों को ऐसे ही विचार करके गुरु पूजा में हम लोगों को प्रवेश करना चाहिए। तब तक गुरु पूजा होगी, व्यास जी की पूजा होगी। प्रभुपाद जी ने भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने बहुत प्रकार की शिक्षा दी है इसके विषय में। प्रभुपाद जी तो कहते हैं जैसे हमने शिष्य नहीं किया, हमने सब गुरु किया, और सब शिष्यों को देखकर कहते हैं जिनसे हरि कथा उदित होती है उन सबको प्रणाम करते हैं। ये सब तो ये सब है विपद उद्धारण बंधो। ये सब चीजों को ग्रहण करना चाहिए, तब तो भक्ति राज्य में भाई हम लोग प्रवेश करेंगे, अन्यथा प्रवेश करना बड़ा भारी कठिन। हम लोग को जानना चाहिए ये शुद्ध भक्ति क्या चीज है। हम लोग स्वरूप सिद्धा भक्ति को, संग सिद्धा भक्ति को भक्ति समझ लेते हैं, पहला ये समझ जाएगा, कोई उपाय नहीं है। किंतु वैष्णव के संग से हम शुद्ध समझेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अर्चन दास साक्षात्म निवेदन, और इनमें भी पांच, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मुक्ति श्रद्धा सेवन, ये इन पांच चीजों, ये इतनी शक्ति है कि सत्य सत्य प्रेम उत्पन्न कर, यदि नाम अपराध न हो तो। इसमें हम लोगों को प्रवेश करने की चेष्टा करनी चाहिए। इनमें भी सबसे श्रेष्ठ बतलाया श्रवण कीर्तन और स्मरण, भगवान का नाम रूप गुण लीला का पहले श्रवण, श्रुत गृहीतया, पहले सुने गुरु मुख से, वैष्णव के मुख से सुने और इसके बाद में ग्रहण करें, तब ये श्रुत गृहीतया होगा, सुनाई नहीं तो नहीं। इसलिए पहले कीर्तन करने की भी पहले, हरिनाम करने के पहले सुनो ये हरिनाम तत्व क्या है, भक्ति तत्व क्या है। इन तीनों में भी नाम सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि नाम और नामी, तब समझ करके ऐसा नाम करेगा उसको भक्ति का स्वरूप, भगवान का स्वरूप सब कुछ उसके अंदर में। यह है शुद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्ध, और औपाधिक भक्ति अथवा आरोप सिद्धा भक्ति ये नहीं, किंतु दूसरे दूसरे जो उपाधियां हैं उसी को ही भक्ति मान करके हम उसमें चलते हैं। संग सिद्धा किसको कहते हैं, खूब दीनहीन है, तृणादपि सुनीच है, दूसरों को सम्मान भी देता है, दयालु है, उपकारी है, सब कुछ है, किंतु अभी भक्ति की धारा उसमें प्रवेश नहीं की गई। भक्ति के साथ में रहने पर तो वो भक्ति है, और भक्ति ज्यादा हट गई, केवल एक आदमी खूब दयालु है, खूब दीनहीन भी है और भक्ति नहीं है तो उसे क्या लाभ। एक आदमी सदाचारी है, हमारे गीता में तो कहते हैं अपि चेत सुदुराचार, दुराचार से भी युक्त हो और अनन्य रूप में भजन करने वाला है उसको साधु ही समझो, क्योंकि धीरे धीरे साधु हो जाएगा तत्क्षणात्। किंतु इन लोगों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए संग सिद्धा नहीं, आरोप सिद्धा भी नहीं, शुद्धा भक्ति की जरूरत है। महाप्रभु जो शिक्षा दिया उसको ग्रहण करते हुए यदि चल सके, यही व्यास देव जी की शिक्षा, इसका पालन करना ही गुरु जी की पूजा, व्यास की पूजा है। जो पालन नहीं करता, केवल जानता है, ऐसा जानने से नहीं होगा, अपने जीवन में वो लाना होगा। यदि हम लोग थोड़ा से भी ला सके तो व्यास पूजा हो जाएगी, गुरु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, वैष्णव और भगवान सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। आज यही कह करके मैं वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हमारे पूज्यपाद भारती महाराज जी भी पधारे हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, आप लोग उनसे भी थोड़ा सा कुछ समय
करोन्मीतम तस्मै श्री गुरुवे नाम श्रेष्ठां मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो विश्वप्रतीतकृपया श्रीगुरुं पांग नतोऽस्मि। मञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायति कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पति गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुति तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विशभानुसृते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। महाराज जी से बहुत अमृत किया।
अब चलें हम लोग गंभीरा की ओर जाते हैं। हम उधर जाके सुनेंगे श्री महाराज श्रीमुख से श्रीमान महाप्रभु गंभीरा में क्यों रहते थे, क्या करते थे, क्या उनका भावधारा है, इसके बारे में हम आप लोगों को सब साथ लेकर के महाराज जी का अनुगत्य में गंभीरा का भाव सुनने के लिए चल रहे हैं। हरे कृष्ण।
उनको सबसे पहले आकर के दर्शन किया गंगा जी का, भागे और करके गिर पड़े। इसके बाद में सार्वभौमाचार्य जी देखा, जैसा ऐसा तो जीवन में हमने कभी देखा नहीं ऐसा भाव, अष्टसात्विक भाव शास्त्रों में लिखा है। और धुमाई इत्यादि जगत में कहीं कहीं देखा है थोड़ा थोड़ा, किंतु दीप्त प्रदीप्त उदीप्त ये कहीं नहीं देखा। आज इनको देख रहे हैं, उससे भी ये श्रीमती राधिका में जो भाव उत्पन्न होते हैं सब किसी मनुष्य में ऐसा संभव नहीं है, किंतु इसमें दिख रहा है, किंतु ये नहीं आया जो ये भगवान हो सकते हैं,
ये विचार में नहीं आया।
साधारण भक्त समझा और उतने ही सुंदर। तो जब जो रक्षा करते हैं डंडा दे करके फटा हुआ
फटफट शब्द
आशीर्वाद देते
हैं उनको, देखा जैसे ये शब्द से आ गया और उसको वहाँ पर रोक लिया, भीतर नहीं जाने दिया, ये भावावेश में उतर गया। तब वहाँ उठा करके पकड़ करके जबरदस्ती बाहर कर रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनको रोक दिया और अपने परिकरों के साथ में उनको अपने घर में ले गए। गई है वहाँ
गंगा माता मठ,
तो गई है गंगा माता ठाकुरानी के यहाँ ले गए अपने घर पर। तब तक और भक्त लोग सब आ गए और कीर्तन करने लगे, और कीर्तन करते 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 उनको होश आया, फिर धंड होकर के नृत्य करने लगे, फिर शांत हुए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि अब अकेले मत जाना, मैं जाऊंगा दर्शन करूंगा नहीं तो हम अपने किसी आदमी से करा दें, अकेले मत जाना। और उनको वेदांत सुनाना चाहे, नया सन्यासी है ये अपने सन्यास को रख सकेगा या नहीं कोई ठीक नहीं, संसार के की आसक्तियाँ बड़ी प्रबल होती हैं, नारद जी जैसे लोगों को भी व्यस्त कर देती हैं। इलेज का अभी तो 24-25 वर्ष का नौजवान लड़का है, ये संसार में पुनः जा सकता है, इसलिए इसको वेदांत सुनाना अच्छा है। उन्होंने आप हमारे पिता और गुरु तुल्य हैं, सुनाएंगे हम सुनेंगे। 7 दिन तक उनको सुनाया अद्वैत बात शंकराचार्य जी की व्याख्या, जो उस दिन पंडित थोड़ा थोड़ा बतला रहा था सुनाया।
वो जो किताब देखेंगे उसमें तो पूरा ही है,
सुनाया, महाप्रभु जी ने एक एक विचार का उसका खंडन कर दिया। नहीं, हमारा विचार खंडन करने वाला तो संसार में कोई है नहीं। उनको आश्चर्यजनक हुआ, इतने में उन्होंने अपना रूप दिखलाया, भाव होकर के निश्चित होकर के गिर पड़े। अब समझा कि हाँ, ये भगवान है जो बिना मुख हाथ धोए स्नान किए हुए प्रसाद नहीं लेते थे। महाप्रभु जी सवेरे एक दिन प्रसाद लेकर के पहुँचे और साथ ही साथ प्रसाद को लिया। तब देखा जी हाँ, अब भक्ति का उन्मेष इनमें हुआ। तब उन्होंने महाप्रभु जी से कहा कि राय रामानंद नाम के एक हैं, मेरे मित्र हैं, उनको मैं पागल समझता था, अब समझा कि वो महापुरुष हैं, साधारण आदमी नहीं है। अब उधर जाएंगे तो उनको दर्शन। महाप्रभु जी ने कहा कि हमारे लिए आपका परिवार में रहना ठीक नहीं है, हमारे लिए कोई एक स्थान होना चाहिए नित्य। तो उनके गुरु थे राजा जी के गुरु काशी मिश्र
राजा जी, मतलब प्रताप रुद्र
के। वो जब आते थे वहाँ से कटक से, जरूर यहाँ आकर के अपने गुरु जी को चरण दबाते थे, सेवा करते थे, खिलाते थे, और फिर उनका आदेश लेकर के तो मंदिर में जाते थे।
मंदिर जाने से पहले
और जब कभी प्रसाद प्रसाद हो जाता, प्रसाद पाते, अपने गुरु जी का चरण जरूर दबाते, उनकी सेवा करते प्रताप। तो उन्होंने कहा, उनसे राजा से पूछे ही बिना, एक तरह से मालिक थे, उनके ऊपर में बड़ू विश्व।